विद्यारण्यमणि जी द्वारा विरचित पंचदशी का प्रसंग है। अभ्यास के लिए पहले प्रकरण में 25वां श्लोक। समष्टिरे सह सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यभेदनात् तदाभावात् तत्त्वन्नेतु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञयाः तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगाय तनजन्मने पञ्चीकरोति भगवान् प्रत्येकं व्यदादिकं द्विधा विधाय चैकैकम् चतुर्था प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयां सैर् योजनात् पञ्च पञ्चते तैरण्डस्तत्र भुवनम् भोग्य भोगाय श्रयोद्भव हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवे तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यं नराधयः ते पराग्दर्शिना प्रत्यक् तत्तबोध विवर्जिताः कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुज्यते नद्यां कीटा इवावर्तात् आवर्तान्तरमासुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम्। तो प्रसंग चल रहा है परमात्मा की कृपा से प्राज्ञ को सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हो गई। इस प्रसंग से आपको इतना समझना है प्राज्ञ को जो कारण शरीर की प्राप्ति हुई वह किसी की कृपा से नहीं, ईश्वर की कृपा से नहीं हुई है। प्रसंग आप लोगों ने पढ़ लिया है। विशुद्ध सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो ईश्वर बना, मलिन सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो जीव बना। उस जीव का नाम उस समय प्राज्ञ रखा गया। प्राज्ञ कर्ता भोक्ता नहीं हो सका क्योंकि उपाधि के अधीन होकर बैठा है, पराधीन हो गया। प्राज्ञों को पराधीन होने में न प्राज्ञ की गलती है न ईश्वर का दंड है। समझ गए कि नहीं बोलो? प्राज्ञ ने गलती करके पराधीन हुआ है या ईश्वर ने दंड देकर उसको पराधीन बनाया है? अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ना ही प्राज्ञ का अस्तित्व है, वह स्वाभाविक है। समझ गए कि नहीं? प्राज्ञ की पराधीनता वो स्वाभाविक है, लेकिन प्राज्ञ न कर्ता बन पाया न भोक्ता बन पाया। कर्ता और भोक्ता बनने के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। ये प्रसंग तो आप लोगों ने सुन चुके हो ना, 18वें श्लोक में विद्यारण्य मुनि जी ने स्पष्ट कह दिया है, तम प्रधान प्रकृति तद भोगाय ईश्वराज्ञाय। उस प्राज्ञ को भोग कर सके, प्राज्ञ भोग कर सके, इसके लिए ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की कृपा से तम प्रधान प्रकृति में से अपंचीकृत पंचमहाभूत निर्माण की, ईश्वर ने की, प्राज्ञ ने नहीं, क्योंकि प्राज्ञ तो पराधीन है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता है। और उन पांच तन्मात्राओं में से सत्वांश से पांच ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण, रजो अंश से पांच कर्म इंद्रिय और पंच प्राण, इस सब मिलाकर प्राज्ञ का सूक्ष्म शरीर तैयार हुआ। अब ये प्राज्ञ के जो सूक्ष्म शरीर है वो प्राज्ञ ने बनाया नहीं है। इस प्रक्रिया से जीवात्मा ने, प्राज्ञ माने जीवात्मा ने, अपने लिए जो सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता पड़ी वह उसने खुद निर्माण नहीं किया। प्राज्ञ के लिए ईश्वर ने निर्माण किया। ये बात तेईसवें श्लोक तक के प्रसंगों से स्पष्ट हो गया। तेईसवें श्लोक में क्या कहा? बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंचकेर मनसा धिया। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, इस सब को मिलाकर शरीरम सप्तदश भी ही, ये सप्तदश 17 पार्ट्स को जोड़कर, अवयवों को जोड़कर शरीरम, कैसा शरीर? सूक्ष्म। प्राज्ञ के लिए परमात्मा ने सूक्ष्म शरीर बना दिया। सूक्ष्म शरीर तैयार होते ही परमात्मा की आज्ञा हो गई कि प्राज्ञ तुम अब मेरे द्वारा तैयार किया गया इस शरीर का, अर्थात इस साधनों का उपयोग कर। तो ईश्वर की आज्ञा होते ही प्राज्ञ इसमें प्रवेश कर गया। किसमें? सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गया। प्राज्ञ सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गया का मतलब है कि प्राज्ञ का सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य भाव हो गया। तादात्म्य भाव माने यही मेरा स्वरूप है, ये मान्यता ही तादात्म्य भाव है। ये बात 24वें श्लोक के द्वारा स्पष्ट हो गया। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन, तत्र माने तस्मिन् सूक्ष्म शरीरे लिंग शरीरे, अभिमानेन, अभिमान माने यही मेरा स्वरूप है, ये निश्चय, इसी का नाम अभिमान है। उसके चलते क्या हुआ? उसका नाम और स्वरूप ही बदल गया। किसका? प्राज्ञ का। नाम बदल गया है, तैजसत्वम प्रपद्यते, वो प्राज्ञ से तैजस हो गया। अब देखो, ईश्वर की दयालुपना, ईश्वर की दयालुपना इतनी है कि हम उसको किसी शब्दों से नहीं कह सकते। बड़े दयालु है। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म शरीर बना दिया, उसके अंदर आत्मतादात्म भाव पैदा कर दिया और उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। वह भी खुद प्रवेश कर गया। समझे कि नहीं? उस सूक्ष्म शरीर में वह भी खुद प्रवेश कर गया, मतलब उस सूक्ष्म शरीर के साथ स्वात्म तादात्म्य ईश्वर ने भी बनाई। तब फिर जीवात्मा में और ईश्वर में अंतर क्या रह गया? तेजस और हिरण्य गर्भ। ईश्वर उन शरीर में प्रवेश करके तादात्म्य भाव प्राप्त हुआ, तो ईश्वर का भी नाम रूप बदल गया। सूक्ष्म शरीर में आत्म तादात्म्य करने पर ईश्वर का नाम हो गया हिरण्य गर्भ। प्राज्ञ का नाम हो गया तेजस। ईश्वर का नाम हो गया हिरण्य गर्भ। वही सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने पर ईश्वर का नाम तेजस क्यों नहीं हुआ? तो बोले अंतर ही है। प्राज्ञ केवल एक सूक्ष्म शरीर में स्वात्म तादात्म्य करके बैठा, ईश्वर सभी सूक्ष्म शरीरों में स्वात्म तादात्म्य कर बैठा। दूसरी बात, दूसरे शब्द से मैं आपको समझाऊं। तेजस को पूछा गया कि तू कितने सूक्ष्म शरीर को जानता है? बोले मैं कितने को जानता? मैं तो एक ही अपना जो सूक्ष्म शरीर है उतने ही जानता हूं। दूसरे का सूक्ष्म शरीर क्या है, कहां है, कैसा है, मुझे क्या पता? मुझे अपना शरीर से संबंध है, दूसरे शरीर से क्या संबंध है मेरा? इसीलिए तेजस को अर्थात जीवात्मा को दूसरे के दिल के दर्द को क्या पता? समझ गए कि नहीं? अपने दिल के दर्द को तो उसे पता है। उससे पूछो कि
तो केवल अपने दिल का दर्द को जानता है कि दूसरे के दिल के दर्द को भी जानता है? क्या जवाब देते हो तुम लोग? तुम लोग क्या जवाब दिया करते हो? मुझे अपने दिल के दर्द का मुझे पता है, दूसरे का क्या लेना देना है महाराज हमको? अपने खुशी का हमको पता है, दूसरे की खुशी का हमको क्या पता है? अपने दुख दर्द का हमें पता है, दूसरों को क्या पता है? नीतिकारों ने कहा है ना, बंदे क्या जानती है कि प्रसव पीड़ा क्या होता है? बंदे को क्या पता कि प्रसव पीड़ा कैसी होती है? तो जिसको हुआ है उसको पता है, विद्वान एव विजानाति। विद्वान की परिश्रम मेहनत, कितना मेहनत होता है ये एक विद्वान दूसरे विद्वान की बात जान सकता है। मूर्ख क्या जानेगा कि कविता लिखने में विद्वान को कितना परिश्रम करना पड़ता है? तो स्वात्म तादात्म्य, एक शरीर में तादात्म्य करने के चलते एक शरीर के भावना को तो वो जानता है, दूसरे शरीरों की भावना के बारे में पूछा जाए तो वो अनभिज्ञ है। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं, दुनिया में जितने भी दिल हैं, ध्यान देना, दुनिया में जितने भी दिल हैं सभी के दिलों के दुख दर्द को वो जानता है। कौन जानता है? ईश्वर। इस हिसाब से ईश्वर नहीं जानता, ध्यान देना, हिरण्यगर्भ जानता है। इस हिसाब से अब ईश्वर और हिरण्यगर्भ को एक मानो तो ईश्वर जानता है कह दिया जाता है, लेकिन ईश्वर को दूसरे के दिल के दर्द को जानने के लिए हिरण्यगर्भ होकर जानना पड़ता है। हिरण्यगर्भ हुए बिना ईश्वर दूसरे के दिल के दर्द को नहीं जान पाएगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ, समष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य भाव तो ईश्वर ही प्राप्त करता है। अर्थात ईश्वर अर्थात हिरण्यगर्भ सभी ईश्वर सभी सूक्ष्म शरीर में एक साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हुआ तो उस ईश्वर का नाम हो गया हिरण्यगर्भ। लेकिन प्राज्ञा एक सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण उसका नाम तेजस हुआ, तो तेजस होने में और हिरण्य गर्भ होने में अंतर यह है कि एक समष्टि उपाधि को अपनी उपाधि मानता है वो हिरण्य गर्भ हो गया, एक व्यष्टि उपाधि को अपनी उपाधि मानता है तो वह तेजस हो गया। ये 24वें श्लोक के द्वारा ये बात कही गई है। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भताम् ईशः तयोर्व्यष्टि समष्टिता। ये दोनों आभास में, ध्यान देना, दोनों आभास में, ब्रह्माभास में, ब्रह्म नहीं ब्रह्माभास, प्राज्ञ भी ब्रह्माभास, ईश्वर भी ब्रह्माभास। तो प्राज्ञ सूक्ष्म शरीर में आ गया तेजस, ईश्वर सूक्ष्म शरीर में आ गया तो हिरण्यगर्भ। अंतर क्या है तो बोले तयोर व्यष्टि समष्टि था, बस अंतर इतना ही है। एक एक सूक्ष्म शरीर को जानता है, दूसरा सभी सूक्ष्म शरीर को जानता है। तो एक केवल एक दिल के दर्द को जानता है, मैं आपके समझने की भाषा में, लोक भाषा में कह दूं, सिंपल भाषा में कह दूं, एक केवल एक दिल के दर्द को जानता है, दूसरा सभी दिल के दर्दों को जानता है। तो यही फर्क है और कुछ नहीं है। इस बात को ये 25वें श्लोक के द्वारा और स्पष्ट कर रहे हैं। समष्टिरि सर्वेषां स्वात्मतादात्मवेदनात् ईशः सर्वेषां, सभी सूक्ष्म शरीर के साथ स्वात्मतादात्मक वेदन करने के कारण उसका नाम हिरण्यगर्भ पड़ गया। तद अभावात, सभी सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य का अभाव होने के चलते, तद अभावात अन्यतु कत्यंते व्यष्टि संज्ञया। तो समष्टि और व्यष्टि की परिभाषा करके विद्यारण्य मुनि जी समझा रहे हैं, क्या है समष्टि, क्या है व्यष्टि। चार आदमी को निमंत्रण देकर खाना खिलाओ तो वह व्यष्टि हो गया, सभी आदमी को निमंत्रण देकर खाना खिलाओ तो वह समष्टि हो गया, और क्या है भंडारा। तो भंडारा दो प्रकार के होते हैं हमारे आश्रमों में, भंडारे का नाम ही यही रखते हैं हम लोग, भंडारा है। तो पूछा जाता है कि कैसा भंडारा है, समष्टि भंडारा है कि व्यष्टि भंडारा है, कैसा माने ये अभिप्राय है, किस प्रकार का भंडारा है तुम्हारे, समष्टि की व्यष्टि। और यदि कहा कि हमारा जो भंडारा है वो समष्टि है, तो सब पहुंच गए, सबको पहुंचने का अधिकार है, सब पहुंचेंगे, किसी को रोक नहीं पाओगे। समष्टि भी कहो और किसी को रोके और किसी को जाने दे, ये नहीं चलेगा। समष्टि माने सभी के लिए ओपन है। व्यष्टि यदि कह दिया है ये व्यष्टि भंडारा है, तो सिलेक्टेड व्यक्ति ही वहां जाएंगे, तुमाना तुमाना तुमाना। मान लो एक आश्रम में विद्यार्थी, महात्मा, कर्मचारी सब मिलाकर 15-20 आदमी रहते हो, है ना? तो उस आश्रम में निमंत्रण देने जाओ, कल हमारे यहां भोजन है, भंडारा है, आप आना। तो पूछेगा उस आश्रम में, समष्टि है कि व्यष्टि है? बोले व्यष्टि है। व्यष्टि है तो तुम्हें नाम लेकर कहना पड़ेगा कि कौन कौन आवे। बोले कोठारी आवे, महंत आवे, एक दो और महात्मा पुजारी आवे। तो कोठारी महंत पुजारी जाए, और नहीं जा पाएंगे क्योंकि व्यष्टि है। कहा कि समष्टि है, तब तो कोठारी, भंडारी, महंत, पुजारी, कर्मचारी, धर्माचारी सब जाएंगे, बर्तन मांजने वाला भी जाएगा, झाड़ू लगाने वाला भी जाएगा, महंत होकर बैठने वाला भी जाएगा, सब जाएंगे। तो समष्टि और व्यष्टि ये शब्द महात्माओं में खूब चलता है। हाँ, इतना ही फर्क। अब विचार करो, फिर उसे हिरण्यगर्भ ने देखा यानी ईश्वर ने देखा है। भोगने के साधन उपकरण तो मैंने तैयार कर दी,
लेकिन भोक्ता नहीं बन पाया, भोक्ता नहीं बन पाया। दो चीज की अभी कम रह गई, अभी और दो चीज की कमी रह गई। एक तो
भोगने की साधन तैयार नहीं हुए, साधन नहीं, भोगने के साधन तो तैयार हो गए, भोग्य वस्तु तैयार नहीं हुआ। अब तुमको भोजन करने के लिए बुलाएं, खाली थाल रख दें और कहे कि खूब खाओ तो क्या खाएगा? खाने की चीज होना चाहिए ना। बोले तुम्हारे मुख नहीं है, तुम्हारे हाथ नहीं है, बोले है, फिर क्यों नहीं खाते? तो बोले खाने की चीज नहीं है। तो ईश्वर ने, हिरण्यगर्भ ने विचार किया कि इस प्राज्ञ को भोगायतन यानी जहां बैठकर ये आराम से भोगता बनकर भोग भोग पाए, ऐसा भोगायतन माने शरीर, स्थूल शरीर। केवल सूक्ष्म शरीर में भोक्ता नहीं बन पा रहा है, तो भोगायतन नहीं है। और दूसरी बात है कि स्थूल शरीर में रहकर भोग्य पदार्थ नहीं है, तो भोग्य पदार्थ भी बनाना है, तो क्या करें? तो ये 26वें श्लोक के द्वारा ईश्वर ने विचार करके आगे का कर्म आरंभ किया। तद्भोगाय, तद्भोगाय तत् माने जो प्राज्ञ या तेजस बन गया था उसके लिए, ईश्वर या हिरण्यगर्भ को भोगने की आवश्यकता नहीं है। प्राज्ञ पराधीन है, इसीलिए तेजस भी पराधीन है, इसीलिए उसको भोगने की जरूरत है। ईश्वर स्वतंत्र है, इसलिए हिरण्यगर्भ भी स्वतंत्र है, इसलिए उसको भोगने की जरूरत नहीं है। तो उसने तत् शब्द का अर्थ होता है प्रज्ञ या तेजस। तद्भोगाय उसको भोक्ता बनाने के लिए, कर्ता बनाने के लिए, कर्ता और भोक्ता बनाने के लिए, पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने। तो दो चीज को बनाना अभी बाकी है, क्या है? भोग्य वस्तु भी हमको ही बनानी पड़ेगी। उमा आमरस तो बना सकती है लेकिन आम नहीं बना सकती कौन बनाएगा आम? ईश्वर जानता है। ये आमरस तो बना सकती है लेकिन आम नहीं बना सकती है, पूरी तो बना सकती है लेकिन गेहूं नहीं बना सकती। तो गेहूं बनाएगा कौन? आम बनाएगा कौन? बटाटा पौवा तो बना सकती है, हैं? चोखा नहीं बना सकती है, पौवा बनाने के लिए चोखा चाहिए पहले, बटाटा चाहिए, बोलो। तो मूल वस्तु तो चाहिए ना, वो बना नहीं सकती। चटनी, मीठी चटनी तो बना सकती है लेकिन शुगर केन बना सकती है? घर के अंदर ईश्वर को बनाना पड़ेगा। शुगर केन बना देंगे तो फिर उसमें से चीनी बनाने का काम तुम करते रहो। शुगर केन तो गन्ना तो ईश्वर को ही बनाना पड़ेगा ना। खट्टी चटनी तुम बना सकते हो लेकिन नींबू तो ईश्वर को ही बनाना पड़ेगा ना। तीखा चटनी तो तुम बना सकते हो लेकिन मिर्ची तो ईश्वर को ही बनाना पड़ेगा ना। इसको कहते हैं भोग्य पदार्थ। ये बनाना जरूरी है तभी ये भोक्ता बन पाएगा, तभी ये कर्ता बन पाएगा। तो क्या करें महाराज? पंचीकरोति भगवान प्रत्येकं वियदादिकं पंचमहाभूत तम प्रदान प्रकृति से। प्रसंग भूलना नहीं। तम प्रदान प्रकृति से ईश्वर ने पंच सूक्ष्म महाभूत बनाया था, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये सूक्ष्म भूत थे और इन भूतों में रहे हुए सत्व अंश से ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण, रजो अंश से कर्मेन्द्रिय और पंच प्राण बनाया था। इन्हीं सूक्ष्म भूत में तीसरा जो अंश था गुण, तमोगुण, वो बचा हुआ था। तो तमोगुण में भी तमोगुण आ गया। अले देखो, तम प्रदान प्रकृति से पांच सूक्ष्म महाभूतों को बनाया, उनमें भी तीन गुण विद्यमान थे, सत्व गुण से और रजोगुण से सूक्ष्म शरीर बना दी। तीसरा जो गुण था उस तन्मात्राओं में, आकाश आदि तन्मात्राओं में, सूक्ष्म भूतों में, उसके आधार बनाकर उस परमात्मा ने पंचीकरण कर दी। पंचीकरोति भगवान, भगवान माने स्वतंत्र, भगवान माने सामर्थ्यशाली, स्वतंत्र। ईश्वर बोलो चाहे हिरण्यगर्भ बोलो, दोनों ही स्वतंत्र हैं। भगवान, अब यहां ईश्वर को ही लेना। प्रत्येकं वियदादिकं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये सूक्ष्म पांचों भूतों का प्रत्येक का पंचीकरण किया। पंचीकरण का मतलब प्रत्येक को पांच पांच भाग लगाई, उसको बोलते हैं पंचीकरण। पांच करण, एक में से पांच करना, इसको पंचीकरण। महाराज हमको समझ में नहीं आया ये पंचीकरण क्या होता है, कैसे किया पंचीकरण। तो पंचीकरण की वेदांत में प्रसिद्ध प्रक्रिया है ये, उसके लिए एक श्लोक स्वतंत्र विद्यारण्य मुनि जी ने रचना की। ये ध्यान से सुन लेना। द्विधा विधाय चैकैकम् चतुर्धा प्रथमं पुनः। एक एकम च एक चैकेकम, एक एकम प्रत्येक भूत को, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, एक एक भूतों का द्विधा करोति। फिफ्टी फिफ्टी आधा आधा करके दो दो भाग कर दिया। तो क्या हुआ, आकाश के दो भाग हो गए, एक आकाश का दो भाग हो गए, एक जल का दो भाग हो गए, एक तेज का दो भाग हो गए, एक पृथ्वी का दो भाग हो गया, यानी प्रत्येक भूतों का दो दो भाग हो गए। इतनी बात समझ गए हम। अब जो दूसरा भाग है, दो भाग का मतलब पहले भाग को सुरक्षित रखा 50%, 50-50 दो भाग कर लिया ना, समझ लो ना। तो पहला भाग उसको सुरक्षित रखा, उसको टच नहीं किया उसने। अब दूसरा जो भाग है 50%, उसका फिर उसने चार भाग लगाई, कितना हुआ 12.5%। तो 5 पार्ट्स हो गए ना आकाश के, 12.5% के चार भाग, 50% का एक भाग, टोटल 5 टुकड़े हुए कि नहीं, ये बात समझ में आ गई आपको। सेम वायु का, वायु का दो भाग किया, 50% भाग को सुरक्षित रखा, दूसरा जो 50% भाग है उसका फिर चार भाग, वही 12.5% का चार भाग। इस तरह पांचों पांच का भागवंडा कर ली, तो 5 पीस में से 25 पीस हो गए कि नहीं है। 5 पीस 100% के थे, अब 25 पीस हो गए, 100% का एक पीस भी नहीं रहा, रहा 5 पीस 50% के रहे और 20 पीस 12.5% के रहे। अब 100% रहा नहीं, तो भगवान ने फिर क्या विचार किया, भूतों को 100% ही बनाना चाहिए, परसेंट तो 100 ही चाहिए। तब बाकी 50% और भूतों को लेकर जोड़ दिया, आकाश 50% अपना सेल्फ था है ना, तो 12.5% वायु का ले लिया, 12.5% तेज का ले लिया, 12.5% जल का ले लिया, 12.5% पृथ्वी का लिया, तो आकाश अब 100% हो गया कि नहीं, 50% अपना सेल्फ था है ना, बाकी 50% अन्यों का लिया। पहले आकाश 100% बिल्कुल प्योर था, अब आकाश 100% मिक्सचर हो गया, आकाश 100% तो 100% नहीं हुआ, लेकिन अब आकाश का स्वरूप क्या हुआ, मिक्सचर 100% हो गया। समझ में आ गई बात। सूक्ष्म शरीर बनाते समय आकाश प्योर 100% था, स्थूल शरीर बनाने के लिए आकाश मिक्सचर 100% हो गया। इस समय तुम्हारी जो आकाश है ये ध्यान देना, ये मिक्सचर आकाश है। तुम जिस आकाश में एरोप्लेन उड़ाते हो वो कौन से आकाश है, मिक्सचर आकाश है। इसको कहते हैं भूताकाश, इसको कहते हैं स्थूल आकाश। इस आकाश में 50% आकाश का अपना प्योर स्वरूप है, बाकी 12.5% इस आकाश में वायु का भाग मिला हुआ है, 12.5% तेज का भाग मिला हुआ है, 12.5% जल का भाग मिला है और 12.5% पृथ्वी का भाग मिला है। अब स्वयं यही बात और भूतों के साथ जोड़ लो, वायु 50% वायु का अपना प्योर सेल्फ भाग है, अब बाकी 50% आकाश का 12.5, तेज का 12.5, जल का 12.5 और पृथ्वी का 12.5, वायु का 50। अब सेम फार्मूला तेज में प्रयोग कर लो, 50% तेज का अपना है, बाकी 50% में से आकाश का 12.5, वायु का 12.5, जल का 12.5 और पृथ्वी का 12.5। अब 100% मिक्सचर हो गया कि नहीं? सेम जल, जल का 50% अपना है, आकाश का 12.5, वायु का 12.5, तेज का 12.5, पृथ्वी का 12.5, 100% मिक्सचर जल हो गया। इसी तरह पृथ्वी का 50% अपनी और 50% में अन्यों का, 12.5 आकाश का, 12.5 वायु का, 12.5 तेज का और 12.5 जल का। तो अभी जो तुम पृथ्वी देख रहे हो, जिस पृथ्वी में तुम चल रहे हो, ये पृथ्वी स्थूल पृथ्वी है, ये पंचीकृत पृथ्वी है। अभी जो पानी पी रहे हो तो पानी स्थूल पानी है, यानी पंचीकृत पानी है। अभी तुम जो तेज देख रहे हो, रोशनी देख रहे हो, ये रोशनी, ये तेज, ये गर्मी पंचीकृत है, स्थूल है। अभी तुम जो श्वास ले रहे हो, हवा ले रहे हो, श्वास ले रहे हो, ये श्वास स्थूल हवा है, ये पंचीकृत है। और इस समय जो तुम आकाश स्पेस का उपभोग कर रहे हो, यह स्थूल आकाश है। हालांकि आकाश स्थूल नहीं होता, सूक्ष्म ही होता है, फिर भी पंचीकरण के चलते ये स्थूल हो गया। आकाश का स्थूल स्वरूप ये है, पंचीकृत है, यानी ये मिक्सचर्स है। अब इस तरह के सूक्ष्म 5 भूतों में से स्थूल 5 भूतों को निर्माण किया। किसने? ईश्वर ने। ये काम किया ईश्वर ने, पंचीकरण करने का काम ईश्वर का है, उसने पंचीकरण किया। तो देखा स्थूल भूत स्थूल हो गए सब, तब इन स्थूल भूतों से उसने सबको मिलाया, ये 5 स्थूल भूतों को इकट्ठा कर ली तो एक अंडा तैयार हो गया। तो अब आमलेट खाओ जितना खाना हो। उस अंडे का नाम रख दिया ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्म ने बनाया, ईश्वर ने बनाया ना, इसलिए मुर्गांड, कुक्कुट अंडा। मुर्गे के अंडे को क्या बोलोगे? कुक्कुट अंडा। अब ये ब्रह्मा ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, हिरण्यगर्भ ने बनाया, तो क्या हुआ? ब्रह्मांडा, गोल मटोल हो गया, मिला दिया ना सब, गोल हो गया। तीरंडस्तत्र सत्र भुवनम तेई, पांचों पंचीकृत स्थूल भूत मिलकर एक अंडा तैयार हुआ, गोल गोल अंडा तैयार हुआ। तत्र भुवनम, उस अंडे के अंदर भुवन तैयार हुए, 14 भुवन, 14 लोक, वो उसी अंडे के अंदर है। किसके अंदर? ब्रह्मांड के अंदर। भू भुव स्व महाजन तप सत्य, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये उस अंडे के अंदर है 14 लोक। तेरंडस्तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रयोद्भव, उन्हीं में से भोगाश्रय तैयार हुआ, स्थूल शरीर तैयार हुए। पृथ्वी में भोग्य भोगाश्रय स्थूल शरीर, स्वर्ग में भोग्य भोगाश्रय, अंतरिक्ष में भोग्य भोगाश्रय, महरलोक में भोग्य भोगाश्रय, और तत्तद् भोगाश्रय में रहकर जीवात्मा यानी तैजस उन भोगाश्रयों में प्रवेश करेगा तो भोक्ता बनेगा, और तत्तत् भोगाश्रय में रहकर भोग्य पदार्थ, भोग्य पदार्थ है, भोग्य पदार्थ भी भोगाश्रय और भोग्य पदार्थ, दो चीज उसी पंचीकृत पंच महाभूत के मिले हुए अंड ब्रह्मांड, उसी ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 भुवन, और उन 14 भुवनों के अंदर अलग अलग भोगाश्रय, अलग अलग भोग्य पदार्थों का परमात्मा ने होलसेल में निर्माण किया, बना दी, बस बना दिए, एक साथ बना दिए। हिरण्यगर्भ स्थूले अस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्। समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमानी हिरण्यगर्भ अब समष्टि इस ब्रह्मांड में स्थूल शरीर में आत्मतादात्म्य करने से हिरण्यगर्भ का नाम पड़ गया वैश्वानर, समझे कि नहीं? इस ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ प्रवेश कर गया, और ब्रह्मांड में प्रवेश करके ब्रह्मांड को ही मैं कहने लग गया, तो उस हिरण्यगर्भ का नाम पड़ा क्या? वैश्वानर। और एक लोक में एक शरीर भोग्याश्रय में तैजस प्रवेश कर गया, एक लोक के अंतर्गत भोगाश्रय यानी स्थूल शरीर जो तैयार हुआ था, उस स्थूल शरीर में तैजस पुरुष प्रवेश कर गया, तो उसी स्थूल शरीर को मैं ये कहने लगा, तो उस तैजस का नाम पड़ गया विश्व, समझे कि नहीं? तो अब देख लो, माया मलिन सत्व, माया प्रतिबिंबित ईश्वर, मलिन सत्व प्रतिबिंबित प्राज्ञा, दूसरा सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर में ईश्वर का प्रवेश हिरण्यगर्भ हो गया, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में प्राज्ञा का प्रवेश तैजस हो गया। अब पंचीकरण के बाद जो ब्रह्मांड तैयार हुआ, पूरे ब्रह्मांड में आत्मतादात्म्य किया हिरण्यगर्भ ने, उसका नाम वैश्वानर पड़ा, और एक छोटे से टुकड़े में ये छोटा सा टुकड़ा साढ़े तीन हाथ के टुकड़े में प्रवेश करके मैं हूं कहने लगा तो तेजस का नाम पड़ गया, यहां विश्व, उसका नाम क्या हुआ विश्व। इस समय आप हमारा नाम है विश्व, ईश्वर का नाम है वैश्वानर। स्वप्न के समय में आप और हमारा नाम होता है तेजस, ईश्वर का नाम होता है हिरण्यगर्भ। सुषुप्ति के समय में आप और हमारा नाम होता है प्राज्ञ, ईश्वर का नाम ईश्वर रहता है। हैं? ईश्वर क्या स्वप्न देखेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।